बीबीसी इंडिया बोल 9 मार्च दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। क्या मध्यस्थता के जरिए सुलझेगा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद या इससे उलझन और बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को सौंपा है मध्यस्थता का काम, क्या वो अपने मकसद में सफल हो पाएंगे? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। बतौर मेहमान चर्चा में शरीक होंगे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना का हमला कामयाब रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि पाकिस्तान ने पत्रकारों को उस जगह पर जाने ही नहीं दिया। इसी से पता चलता है कि बहुत कुछ हुआ है जिसे पाकिस्तान छिपा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के हवाई हमले ने अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल किए हैं। नाइजीरिया में 36 राज्यों के गवर्नर के लिए हो रहे चुनावों में हिंसा और वोट खरीदने के लिए पैसे देने के मामले सामने आ रहे हैं। बजट को नियंत्रित करने समेत गवर्नर के पास कई शक्तिशाली ताकतें होती हैं, और तो और इसमें से कई राज्यों का बजट अफ्रीका के कई देशों से बहुत अधिक है। हालांकि इस चुनाव में कम मतदान हो रहा है। वेनेजुएला में इस समय दशकों से भी लंबे समय के बाद देश का सबसे बड़ा पावर कट चल रहा है। इसी के मद्देनजर कुछ ही घंटों में वेनेजुएला में विरोध प्रदर्शन शुरू होने जा रहे हैं। विपक्षी नेता ख्वान गाइदो के समर्थक सड़कों पर उतरेंगे। साथ ही हजारों लोग राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से इस पर प्रतिक्रिया चाह रहे हैं। गाइदो राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी कराकस और देश के दूसरे हिस्सों में बिजली धीरे धीरे आ रही है। वहीं सरकार का आरोप है कि विपक्षी ताकतों ने जल विद्युत बांध को नुकसान पहुंचाया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि पावर कट प्रबंधन का नतीजा खराब है। शुक्रवार रात को अंधेरे में खरीदारी करने गई मेलिसा कोरोनादो ने कहा, हमारे घर में फ्रिज में इंसुलिन थी। प्यूर्तो ओरदास में मौजूद दोस्तों से हमने ये ली थी। 24 घंटे से हमारे पास बिजली नहीं है और हमें चिंता है, क्योंकि मालूम नहीं कि इंसुलिन कब खराब हो जाए। हम खाना खरीदने आए हैं क्योंकि मेरे पास गैस स्टोव नहीं है और बिजली का स्टोव काम नहीं कर रहा है। ये थे वेनेजुएला की एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सीरिया जाकर आईएस में शामिल हुई शमीमा बेगम की ब्रिटिश नागरिकता छीनने के सरकार के फैसले का बचाव किया है। पार्टी चेयरमैन ब्रेंडन लुइस ने कहा है कि पिछले महीने राष्ट्रहित में ये फैसला लिया गया था। शमीमा बेगम के नवजात बच्चे की कल उत्तरी कोरिया के एक कैंप में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ब्रिटेन सरकार के फैसले की काफी आलोचना हो रही है। 4 साल पहले शमीमा बेगम और उनके 2 स्कूली दोस्त सीरिया जाकर आईएस में शामिल हो गए थे। शमीमा के पिता अहमद अली ने ब्रिटेन से शमीमा को वापस लाने की इजाजत देने की बात कही है। उन्होंने कहा, शमीमा बेगम 4 साल पहले सीरिया गई थी। वो उस समय अवयस्क थी और उसे उतनी समझ नहीं थी। मुझे लगता है कि किसी ने उसे ये करने के लिए प्रेरित किया था। अब मैं सोचता हूँ कि ब्रिटिश सरकार अब उसे वापस ले आए। मैं स्वीकार करता हूँ कि उससे गलती हुई, वे उसे वापस लें और अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सजा दें। ये थे शमीमा बेगम के पिता अहमद अली के शब्द। ईरान के उत्तरी शहर अरक में एक जोड़े को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक शॉपिंग सेंटर में युवक ने युवती के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में दिख रहा है कि गुलाब की पंखुड़ियां दिल के आकार में फर्श पर बिछी हुई हैं और जोड़ा उन पर चलकर जा रहा है। जब महिला ने पुरुष को हाँ में जवाब दिया और वहां मौजूद भीड़ चीखने लगी और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पुलिस कमांडर का कहना है कि दोनों ने इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हालांकि दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। क्या मध्यस्थता के जरिए सुलझेगा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद या इससे उलझन और बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को सौंपा है मध्यस्थता का काम, क्या वो अपने मकसद में सफल हो पाएंगे? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811-7000 और 1811-7001। बतौर मेहमान फोन लाइन पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी। रामदत्त जी स्वागत है आपका।
जी नमस्कार।
स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद ये एक ऐसा मामला है जो बरसों से अनसुलझा है। ये जमीन विवाद का कोई आम केस नहीं है, इसे सुलझाने के लिए पहले भी बातचीत के रास्ते आजमाए गए हैं और अदालतों के फैसले भी आए हैं। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को रामलला सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को बांटने का फैसला दिया था, लेकिन पक्षकारों को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार की सुनवाई के दौरान कहा था कि यह मुद्दा 1500 वर्ग फुट जमीन का नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं का है। और कल मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले का मध्यस्थता के जरिए हल तलाशने के लिए इसे 3 सदस्यीय पैनल के सुपुर्द किया है। इस पैनल के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला है। इसके बाकी 2 सदस्य आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू हैं। कोर्ट ने मध्यस्थों के पैनल से कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया शुरू करें। बातचीत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में होगी, पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहेगी, मीडिया को इसकी रिपोर्ट नहीं करने के लिए कहा गया है। पैनल को 4 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट की जानकारी देनी होगी, 8 हफ्ते में प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पैनल के सदस्य चाहें तो और सदस्यों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पैनल से उम्मीद है, एक रोशनी दिखाई दे रही है। पैनल के प्रमुख बनाए गए जस्टिस खलीफुल्ला ने भी कहा है कि कमेटी इस मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, कोशिशें पहले भी हुई हैं। इस बार क्या अलग हो सकता है और क्या ये मामला सुलझ सकता है? हम जानेंगे इस सवाल का जवाब इस मामले पर दशकों से नजर रख रहे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त जी से, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मैं नवीर रजा खान जमालपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ।
जी
मेरा मानना है कि ये मामला और उलझेगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय को अति शीघ्र इस पर निर्णय देना चाहिए, ना कि इसको लंबा लटकाना चाहिए। वैसे भी राजनीतिकरण हो चुका है इस मामले के लेके।
जी और ये रजा साहब को लगता है कि ये मामला और उलझ जाएगा? वैसे कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है, लेकिन रामदत्त जी जो बात राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की तरह उलझी हो उसे लेकर क्या उम्मीद लगाई जाए? रजा साहब ने तो कह दिया है कि मामला और उलझ ही जाएगा।
देखिए मैं 30 साल पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब वहाँ राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था कि विवादित परिसर में कोई निर्माण न हो, उसमें उन्होंने अंत में ये कहा था कि इसमें शक है कि जो ये मुकदमा है उसके जो कुछ बिंदु हैं वो जुडिशियल प्रोसेस से सुलझाए जा सकते हैं।
जी
वो 2 चीजें हैं, एक तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये हमारी आस्था का सवाल है, राम जी वहीं पैदा हुए थे तो हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। मुस्लिम पक्ष का एक तर्क ये है कि मस्जिद जब एक बार तामीर हो जाती है, बन जाती है, तो वो खुदा का घर है और उसे हम नहीं दे सकते, अदालत चाहे तो दे दे। तो ये जो भावनात्मक या आस्था का प्रश्न है ये अदालत से जरा मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें ये प्रोविजन है कि अदालत को एक बार कोशिश करनी चाहिए कि अदालत के बाहर ये मामला सुलझ जाए मध्यस्थता से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था।
जी।
तो अभी क्या है कि जो हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए गए थे तमाम हिंदी उर्दू संस्कृत अरबी में, उनका ट्रांसलेशन होना है अंग्रेजी में और उसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन्होंने कहा कि इसी बीच ये मध्यस्थता का भी एक कोशिश कर लिया जाए, अगर 1% भी गुंजाइश हो तो कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होगा। अगर इन तीन लोगों की रिपोर्ट जो जाएगी गोपनीय सुप्रीम कोर्ट को, उससे उन लोगों को भी मामला समझने में मदद मिलेगी।
रामदत्त जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पांचू साहब का नाम है जो इस पैनल में है, उन्होंने कई मामलों को सुलझाया है, ऐसा माना जाता है कि वो अच्छे मध्यस्थ रहे हैं कई मुद्दों पर। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे मामले बताए जाते हैं कि उन्होंने उनको सुलझाने का प्रयास किया है। श्री श्री रविशंकर इस मामले को सुलझाने की पहल करने वालों में भी थे, अपनी तरफ से कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन उनके नाम को लेकर AIMIM के नेता जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने एक संशय जाहिर किया है। तो जो 8 हफ्ते दिए गए हैं, संशय अगर जाहिर किया जा रहा है तो कैसे बात बन पाएगी?
देखिए, संशय इसलिए जाहिर किया गया है क्योंकि मध्यस्थता के दौरान उन्होंने एक तरफा बात कही थी कि मुस्लिम पक्ष इसको छोड़ दे, तो वो उस वजह से। लेकिन देखिए, ये जो मध्यस्थ हैं, ये पंच नहीं है, ये जज नहीं है, इनको कोई फैसला नहीं करना, इनको फैसिलिटेट करना है पार्टीज को। तो मुझे लगता है कि, और हर एक का कोई ना कोई दिमाग में अपना पक्ष होता है, जज का भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो बैठेंगे मेडिएशन बिल्कुल अलग प्रक्रिया होती है, जिसमें मध्यस्थ जो पार्टीज हैं उनके बीच में तलाशा जाता है कि क्या कोई समझौता हो सकता है,
यानी उनके पास कोई फॉर्मूला है, ये जानने की कोशिश की जाएगी। रामदत्त जी, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन पहले सुन लेते हैं उन श्रोताओं की बात जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी, मेरा नाम रोहित कुमार, ग्राम पोस्ट जानीपुर, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार का वासी हूँ।
जी रोहित जी,
और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मध्यस्थता तो होनी चाहिए, मध्यस्थता अंत तक होनी चाहिए।
जी,
हमारे बिहार, हमारे देश की संस्कृति रही है, गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति रही है कि बिगड़ते हुए हालात में भी जब हम बैठते हैं तो उस बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव
कुछ हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। जी, जी, हाँ जी, नमस्कार, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी बोले
सर, मेरा नाम चयन यादव सर, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ सर।
जी,
और फिलहाल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ।
जी
सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इससे पहले भी मतलब ऐसे पैनल बनाए गए हैं, और उसके बाद उनका रिजल्ट क्या रहा? और आज के हम टाइम में देखें सर कि इस पे विवाद भी हो गया है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो श्री श्री रविशंकर हैं।
जी, वो सवाल मैंने अभी रामदत्त जी से पूछा था, आपने एक सवाल जो रखा है, हम उसके बारे में रामदत्त जी से पूछ लेते हैं।
एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा सर इसमें।
जी बताएं।
ये कहना चाहता हूँ कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, तो इसमें सर किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है?
जी, ये तय करना तो अदालत का काम है, लेकिन फिर भी आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल मैं रामदत्त जी के सामने रख देता हूँ। रामदत्त जी, जो हमारे एक श्रोता है ये जानना चाह रहे हैं कि पहले कब कब कोशिशें हुई हैं, सरकारों ने भी कई बार कोशिश की है, हाईकोर्ट की तरफ से भी, आपकी जो कल रिपोर्ट हमारी ऑनलाइन पर थी वो हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट ने भी पहले मौका दिया था, अभी आपने बताया भी, क्या सिलसिलेवार
तरीके?
जी,
लेकिन अपनी तरफ से कोई पैनल नहीं बनाया था मध्यस्थता के लिए, एक बात। दूसरी बात, तो इसमें जो प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, सब ने कोशिशें की थी, हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने कोई कोशिश नहीं की है, जबकि उनका वादा था मंदिर निर्माण का, और दोनों वादा था कि या तो मध्यस्थता से या कानून बना के। तो बाकी सारी सरकारों ने कोशिश की थी, लेकिन कुछ न कुछ अड़ंगा लग जाता था, जैसे 1992 में बातचीत इसलिए टूट गई थी क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा का ऐलान कर दिया, तब बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि जब आप कार सेवा करने जा रहे हैं तो फिर बातचीत कैसे हो सकती है। इसी तरह चंद्रशेखर जी जब बातचीत करवा रहे थे तो राजीव गांधी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, उनकी सरकार गिर गई।
जी,
तो ये सब कारण रहे हैं। हाँ, इधर पिछले 5 सालों में 4.5 सालों में कोई कोशिश नहीं हुई।
जो कोशिश हुई वो रविशंकर, श्री श्री रविशंकर की तरफ से हुई, और वो भी
व्यक्तिगत थी
और वो सिरे नहीं चढ़ पाई। इस बीच में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी, अपना नाम?
शफी, जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब पॉइंट से।
जी नमस्कार, अपनी बात रखिए शफी साहब।
सर बात यह है कि अदालत ने जो फैसला दिया है कि मदस्ता के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस पर ये बात अटक नहीं सकती क्योंकि हर आदमी का अपना व्यू होता है, इसलिए ये मुझे बहुत मुश्किल बात लगती है कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। अदालत के बगैर जो फैसला होगा वो अदालत
का ही फैसला आखिरी होगा। आपको लगता है इससे कोई हल नहीं निकलेगा। एक और श्रोता है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
डॉक्टर राम किशन गुप्ता घाटमपुर से बोल रहे हैं।
जी
पाठी जी चरण स्पर्श, मैं तो ये कहना चाहेंगे कि मध्यस्थता जो हो रही है ये खराब नहीं, क्योंकि वैसे ज्यादातर काम मध्यस्थता से ही होते हैं, रहे हैं अभी तक। और अदालत का जहां तक प्रश्न है, अंतिम तो खैर अदालत है ही, लेकिन मध्यस्थता खराब नहीं है। त्रिपाठी जी एक चीज और चाहेंगे कि मैं आपसे पुनः संपर्क भी करूंगा इस संबंध में, और आपसे बात हमारी इसी नंबर पर
जी,
हो सके।
जी आप मुद्दे पर ही रहें, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। रामदत्त जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जब सुनवाई हो रही थी और मध्यस्थता की बात हुई तो हिंदू पक्षकारों में सिर्फ निर्मोही अखाड़ा ही इसके समर्थन में दिखा। अभी ज्यादातर श्रोताओं की जो हम बात सुन रहे हैं वो मध्यस्थता को ठीक बता रहे हैं, लेकिन जब पक्षकार उत्साहित नहीं होंगे तो क्या अड़चन की स्थिति नहीं होगी और उलझन आगे और नहीं बढ़ेगी?
नहीं, पहली बात तो यह है कि निर्मोही अखाड़ा ही 1985 से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षकार है। और बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति ने भी, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कहा कि हम हैं
जी।
जो हिंदू महासभा उसके पक्ष में नहीं थी, और जो रामलला विराजमान हैं वो जिनकी तरह विश्व हिंदू परिषद के लोग पैरवी करते हैं वो उसके पक्ष में नहीं है, और आरएसएस की तरफ से भी ये इस तरह की प्रतिक्रिया आई है कि ये ठीक नहीं है, इससे मामला लटकेगा। तो इन सबको देखते हुए ही लोगों को संदेह है कि शायद कोई समझौता फार्मूला निकल पाए, क्योंकि जब जिद है, देखिए समझौता तभी होती है जब दोनों पक्ष खुले दिमाग से बात करें। अगर जिद है कि नहीं है हमको दे दीजिए और इस पे समझौता हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है फिर।
तो आप जो कह रहे हैं कि जिद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये पैनल बनाया, एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट को नजर आती है, भले ही वो केवल तकनीकी एक बात हो सकती है, कहा जा सकता है कि पहले कोशिश करनी होती है, लेकिन फिलहाल जो जिद, आप जिद की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो 3 सदस्यीय पैनल बना है इसके सामने दुनिया का सबसे चुनौती भरा काम है और वक्त उनके पास सिर्फ 8 हफ्ते का है?
देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि चुनाव के दौरान, चुनाव बीत जाएगा, चुनाव के दौरान इस मुद्दे पे ज्यादा चकचक नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि एक हमेशा ये कहा जाता रहा है कि साहब 3 तरीके हैं, या तो संसद से कानून बना के, या मध्यस्थता से, या अदालत के फैसले से। सरकार कह रही है कि हम संसद से कानून नहीं बनाएंगे, तो मध्यस्थता एक ऐसा उपाय है जिसको अगर ट्राई न किया जाए तो बाद में लोग कह सकते थे कि साहब ये सुलझ सकता था, और अगर ये नहीं होगा तो उसके बाद अदालत तो है ही, बैठी ही है, लेकिन अभी अदालत जब तक सुनवाई नहीं कर सकती, जब तक कि जो अनुवाद है सारे डॉक्यूमेंट्स के वो एक दूसरी पार्टी चेक न कर लें, तो वो 2 महीने का टाइम है, इसी बीच ये भी हो
जाएगा। इसी बीच में ये विकल्प कोशिश करना चाहती है अदालत। हम राजनीतिक पहलू पर दोबारा लौटेंगे रामदत्त जी। इस बीच में एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी सर सुन पा रहा हूँ सर।
जी तो अपनी बात रखिए।
तो मैं इंडिया बोल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का, इससे लगता नहीं है कि उलझन सुलझ पाएगी
जी,
क्योंकि पिछले कई सालों से इस विषय पर चर्चाएं होती रही है, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट काफी समय से इसको लटकाता रहा है, बीच में का आज सुनवाई करूंगा कल सुनवाई करूंगा, फिर आपके मध्यस्थता का मुद्दा रख दिया। रविशंकर जी ने तो पहले भी प्रयास किया था कि ये मुद्दा सुलझ जाए, अब आपने जो तीन सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का जो पैनल बनाया है उसमें वही लोग हैं जो पहले थे
जी, ये नया पैनल है, नए लोगों के साथ सामने आई हैं बातें। और एक और श्रोता इस बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी मैं उस्मान गनी चौहान, गुजरात डिस्ट्रिक्ट भरूच विलेज हांसोट से बोल रहा हूँ।
जी उस्मान जी अपनी बात रखिए, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर?
मुझे रामदत्त त्रिपाठी से ये कहना है कि सबसे पहला तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि रामदत्त त्रिपाठी से मुझे बात करने का मौका मिला। वो बहुत बड़े एंकर है, बहुत बड़े बीबीसी के रिपोर्टर है चुके, रामदत्त त्रिपाठी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 92 के अंदर जब मस्जिद टूटा था उस वक्त रामदत्त त्रिपाठी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, को वो रिपोर्ट इस तरह की थी कि रामदत्त त्रिपाठी वहां पे गए थे तो जो अपने जो माल पे वो अपने मकान में जो मकान था वो मकान के ऊपर एक माला था, वो माले पे वहां सब बीजेपी वाले और ये आरएसएस वाले ये अशोक सिंगल साहब वगैरह बैठे थे, उन लोगों ने कोई प्लान तैयार किया था, वो रामदत्त त्रिपाठी जी की रिपोर्ट थी
जी। अगर संक्षेप में आज की बात पर अगर अपनी बात रखना चाहें, कोई सवाल हो आपका तो सीधे पूछे, संक्षेप में दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिलेगा।
बिल्कुल शॉर्ट कह दूं आपको, अगर ये मध्यस्थता की बात है तो मध्यस्थता तो दो मिनट के अंदर सुलझ सकती है। यही होता है कि जैसे अगर हमको इसका मीडिएटर बन के उसको फैसला में ले लेना है तो ये है कि
जी ये आपकी अपनी राय है, लेकिन सभी पक्षों का इसमें एक साथ आना भी जरूरी है। हमें सोशल मीडिया पर भी कई कमेंट मिल रहे हैं, फेसबुक पर आई टिप्पणियों में से कुछ को मैं पढ़ देता हूँ। मोहम्मद उस्मान लिखते हैं, किस बात की मध्यस्थता, आंख अंधी है, मस्जिद दिखाई नहीं देती, कष्ट के लिए क्षमा करें। शंभू शरण लिखते हैं कि अगर अमेरिका और सोवियत संघ कथित शीत युद्ध का समाधान कर सकते हैं तो एक ही देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हमदुल्ला लिखते हैं कि ये मुद्दा सत्ता पाने के लिए खड़ा किया गया है, राजनीतिक दल इसका हल नहीं चाहते हैं। शशिकला की राय है कि मंदिर मस्जिद नहीं, देश को शिक्षण संस्थान चाहिए। संजय सविता की राय है कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर अलग अलग राय। रामदत्त जी, अक्टूबर में भी हमने इस मुद्दे पर आपसे बातचीत की थी, तब कानून बनाने की मांग उठाई जा रही थी, लेकिन जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि पहले कोर्ट का फैसला आएगा, आगे सरकार तभी कुछ करेगी, और उसके बाद से लग रहा था कि ये चुनाव में मुद्दा राजनीतिक तौर पर अहम नहीं होगा, लेकिन अब चुनाव बिल्कुल करीब हैं। भले ही गोपनीयता से बातचीत होगी, बंद कमरों में बातचीत होगी, लेकिन बीच बीच में चर्चा विमर्श तो होता ही रहेगा, तो क्या मुद्दा कुछ गर्म होगा इससे?
देखिए 89 के बाद से हर चुनाव में ये मुद्दा किसी न किसी रूप में रहा है, तो मुझे लगता है मुद्दा तो रहेगा, और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने तो औपचारिक रूप से पालमपुर में प्रस्ताव पास किया था, तो इसलिए वो स्पीच में तो मुद्दा अपना रखेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, और दूसरी पार्टियां उसको रिएक्ट भी कर सकती हैं, वो भी अपना पक्ष रख सकती हैं, क्योंकि ये देश के सामने एक बहुत बड़ा सन 1949 से जब से मूर्तियाँ वहाँ रखी गई थी और ऐसा माना जाता है कि जिला प्रशासन के सहयोग से रखी गई थी, तो तब से ये मुद्दा बना हुआ है। पहले ये एक लोकल मुद्दा था, लेकिन जब 1986 में ताला खुला और उसका टेलीविजन से प्रसारण हुआ तो फिर ये देश के और दुनिया के तम बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि इस तरह का कोई विवाद है, और फिर ये राष्ट्रीय उससे जुड़ गया। दूसरे एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि इसमें कई जैसे कुछ मुस्लिम जो विद्वानों का ये भी कहना, आज ही छपा है सलमान नदवी साहब का, कि मस्जिद तमाम इस्लामिक देशों में शिफ्ट की गई हैं तो की जा सकती है, लेकिन शंका उन लोगों को ये है कि अगर ये मान लिया जाए तो बाकी जो 3000 की लिस्ट बनाई थी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने, फिर बाकी मस्जिदों का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर इमारत के पहले कुछ न कुछ था, अगर हर इमारत खोदी जाएगी, पार्लियामेंट खोदी जाएगी, राष्ट्रपति भवन खोदा जाएगा तो कुछ न कुछ होगा,
यानी एक
तो
मिसाल एक नई न बन जाए, ये एक इस तरह का डर है।
एक हम नजीर न बन जाए।
जी हम दोबारा इस पर लौटेंगे, एक श्रोता और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
राजन गुप्ता सर, मोहनगंज प्रतापगढ़ यूपी।
जी राजन जी, अगर आप अपना रेडियो पीछे बंद कर लेंगे तो आपकी आवाज बेहतर सुनाई देगी। जी बोलिए, अपनी बात रखिए।
जी सर, मामला तो सर सुलझ सकता है, इसलिए साउथ जर्मनी और नॉर्थ जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का मामला सुलझ सकता है टेबल पे आकर, तो कोई भी ऐसा मैटर नहीं जिसको सुलझाया ना जा सके।
शायद यही सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्यस्थता करने की बात की है। एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी मैं विमल द्विवेदी फतेहपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
जी विमल जी,
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब खुदाई हुई जो चीज जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई उसको?
जी रामदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सवाल मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी रामदत्त जी, एक और श्रोता ने बात की थी, जो पुरातत्व विभाग ने साइट की खुदाई की थी, वहाँ से क्या कुछ निकला श्रोता जानना चाह रहे हैं, और क्या कितने प्रामाणिक चीज हैं, अदालत इस तरह के सबूतों को किस तरह से गौर करती है, और क्या मध्यस्थता जो होने जा रही है उसमें भी क्या ये कुछ अहम भूमिका रहेगी इस सबकी।
देखिए, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाई कोर्ट के आदेश से खुदाई की थी तो उसमें गोपनीय नहीं हुई थी, उसमें सभी पक्षों के वकील और प्रतिनिधि बाकायदे वहां रोज रहते थे, डायरी मेंटेन करते थे, और फिर वो रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी गई, तो वो रिपोर्ट तो है वहां। अब उस रिपोर्ट के इंटरप्रिटेशन में मतभेद है। रिपोर्ट में कुछ लोगों का ये कहना है, एएसआई ने भी ऐसा इशारा किया है कि उसमें कोई पुराना मंदिर के अवशेष वहाँ थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार उस पे एतराज कर रहे हैं कि वो बात नहीं है। तो इसलिए उसको दोनों तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्योंकि पुराने तमाम उसमें नीचे खंडहर ढांचे इमारतें मिले हैं, और जिसमें से कई ऐसे लगते हैं जो पूजा के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों कहा था कि इतिहास की हमें जानकारी है, लेकिन देखना है कि मौजूदा वक्त में क्या कुछ हो सकता है। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी सर जी, आदाब।
जी नमस्कार।
जी हम हाफिज कुतुबुद्दीन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर।
जी बोलिए अपनी बात रखिए।
नेत्रहीन है, पहले रामदत्त त्रिपाठी सर को भी आदाब करना चाहेंगे, इनके हम बहुत बड़े मतदार हैं, इनकी रिपोर्टिंग हम सुनते रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ हैं, इनकी खैरियत नहीं मालूम होती।
जी
सर, ये मुद्दे पे हम ये कहना चाहते हैं कि सर शरीयत में मुसलमानों के अगर जहाँ मस्जिद तामीर हो जाती है फिर वो मस्जिद ही रहती है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि ये सालिसी जो होगी, मध्यस्थ होगा, ये किस तरीके से मामला हल हो पाएगा।
जी ये बात रामदत्त जी ने भी कही थी थोड़ी देर पहले। जी एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी मेरा नाम जलालुद्दीन अंसारी है।
जी
जी मैं जलालुद्दीन अंसारी बोल रहा हूं।
जी अंसारी साहब अपनी बात रखिए।
जी मेरा मामला ये है कि ये जो मस्जिद मंदिर का मुद्दा जो है, ये मसला हल होने वाला नहीं है, ये उलझ जाएगा। और
जी उलझ जाएगा, आपको ये लगता है कि उलझन इससे बढ़ेगी। रामदत्त जी मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूँ, कई श्रोता आज आप मौजूद हैं इसलिए सवाल भी ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, आपसे जुड़े हुए ज़्यादा आ रहे हैं सवाल, कई लोगों को उम्मीद दिख रही है, लेकिन आप क्योंकि लंबे समय से ये पूरे मामले को दशकों से देखते आ रहे हैं, मुकदमे और बातचीत के कई दौर देख चुके हैं, आप कितनी उम्मीद लगा रहे हैं, या आपने जो कहा ये 8 हफ्ते का वक्त जो ट्रांसलेशन के लिए चाहिए उसके लिए एक कोशिश रस्मी है?
देखिए इसमें बहुत से लोगों को ये शंका है कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया था, इसलिए नहीं उठाया था कि कोई एक और मंदिर बन जाए, और हिंदुओं के लिए तो मंदिर एक नीम के नीचे रखा छोटा सा चबूतरा भी होता है, एक पत्थर भी होता है। तो उन लोगों का ये कहना है, कई राजनीतिक प्रेक्षकों का, कि ये हिंदुओं के दिमाग को उद्वेलित रखने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है, ताकि सारे हिंदू यूनाइट हो जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि जब जात पात के आधार पर वोट पड़ता है तो उससे बीजेपी का फायदा नहीं होता। तो इस तरह की शंकाएं तो बहुत सारे लोग करते थे। और देखिए ये भी एक बात है कि आखिर 5 साल में जब इसी मंदिर मुद्दे पर आए थे ये सरकार, और 2 बार पहले वाजपेयी जी भी थे, तो ये लोग पहले कहते थे कि संसद कानून बना के दे दे, तो न तो इन्होंने कानून बनाया, न इन्होंने कोई बातचीत कराई। अब अगर सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कराना चाहती तो उसका भी विरोध कर रहे हैं, तो इससे कई लोगों को इस तरह का शक है कि शायद ये हल नहीं होने देना चाहते।
यार ये आपको लगता है कि राजनीति जो इस पर होती है उसकी वजह से आसान नहीं है इस मुद्दे का हल तलाशना। रामदत्त जी वक्त हमारे पास आज इतना ही है, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। स्टूडियो का संचालन किया अजीत सारथी ने। अगले सप्ताह फिर ऐसे ही किसी प्रमुख विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी के साथ। फिलहाल वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।